ओम शांति। आज का टॉपिक है ऊर्जा का शिखर एकांत। ऊर्जा माना एनर्जी, शक्ति, पावर। तो हमें यहाँ कौन सी पावर चाहिए? स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति का शिखर माना सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्रोत ऊर्जा का, तो क्या एकांत। एकांत अर्थात सबको पता ही होगा एकांत। नहीं नहीं पता तो है सबको। एकांत माना एक का होना या एक के अंत में। पहले थोड़ा जनरल बोलेंगे, एकांत माना एक का अंत, एक के अंत में या एक के बाद अंत। दूसरी भाषा में एकांत को मौन भी कह सकते हैं। मौन, मौन और एकांत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मौन में मुख और मन दोनों का मौन होता है। ज्यादातर हम मौन में हो या ना हो, लेकिन मन का मौन सदा जरूरी है। हम एकांत में हो लेकिन मन का मौन नहीं हो तो भी वो एकांत नहीं कह सकते। तो एकांत में क्या क्या कर सकते हैं? चिंतन और शांति का अनुभव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एकांत में हम सबसे ज्यादा स्वयं के साथ होते हैं। एकांत में हमारे साथ हमारे सिवा कोई नहीं होता। हम माना स्वयं आत्मा, तो स्वयं की साधना का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है एकांत, और स्वयं से स्वयं को मिलाने का भी एकमात्र माध्यम है एकांत। एकांत में हम कोशिश करते हैं कि हम स्वयं से मुझको मैं से मिलाए, और हम आध्यात्मिकता में मैं को मिलने के बाद मेरे बाबा तक पहुंचते हैं हम। और एकांत में सबसे बड़ा कार्य कौन सा कर सकते हैं? हम सेल्फ एनालिसिस, स्वचिंतन, क्योंकि परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है स्वचिंतन। कहते हैं स्वचिंतन से ही स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो एकांत है वो सबसे बड़ा स्वचिंतन का सबसे बड़ा माध्यम है। और आज की भीड़ में कई बार हमारे लिए ही टाइम नहीं मिलता है, भले अलौकिक लाइफ हो या अलौकिक लाइफ, उसमें भी हम बिजी हो जाते हैं अलौकिक लाइफ में भी। तो एकांत है वो जरिया है कि हम अपने पर भी प्रभुत्व पा सकते हैं, अपने एनालिसिस से, स्वचिंतन से। फिर स्पिरिचुअलिटी में सबसे हाईएस्ट स्थिति कौन सी है हमारी? हमें संपन्न स्थिति बनाने का एकमात्र माध्यम एकांत है, कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे संपन्न स्थिति है आत्मिक शांति और आत्मिक प्रेम। अगर हमें स्व के प्रति प्रेम नहीं है तो हम और किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जो प्रेम, शांति, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवलोकन, स्व मूल्यांकन, स्व अवलोकन, वो सबसे ज्यादा एकांत में ही हम कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी की जो भारत की संस्कृति में सबसे ज्यादा जरूरत की है सबको, मानसिक शांति, इनर पीस, वो भी हम एकांत में ही अभ्यास करके ले सकते हैं। और एकांत का सुख वो ही ले सकता है कि जो सबसे ज्यादा अपने साथ रहना चाहता हो। एकांत माना ऐसा नहीं कभी भी कि हम अकेले बन जाए, अकेले बैठ जाए कहीं, वही एकांत नहीं है। अकेले बैठ जाए लेकिन मन में हमारी बाहर आकर्षण हो तो भी हम एकांत नहीं कह सकते उसको। तो एकांत माना स्थूल एकांत के साथ साथ मन का भी एकांत हो, उसे हम एकांत कह सकते हैं। और यही वो अनमोल पल है जहां हम अपने विचारों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो हमारे आसपास हमारे विचारों के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। यही वो एटमॉस्फेयर है जो हमें अपने आप से मिलाता है, और हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं वो हम जांच सकते हैं। अपने को जांचने का और आंकने का एकमात्र माध्यम है एकांत है, और एकांत ही है जो हमारी मौन का अभ्यास को बढ़ाता है। और एकांत का होना ही हमारी मानसिक स्थिति को ज्यादा अर्जित करता है, जो हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हम अपनी स्थिति को संपन्न बनाए। आत्मा की स्थिति संपन्न कैसे बनेगी? जब हम एकांत का अभ्यास करेंगे तो ही हम हमारी मानसिक शक्ति बढ़ाएंगे और सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो जब हम एक्शन में आएंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ कर्म करने का हमें सोच भी कहां से मिलती? एकांत में मिलती है। फिर एकांत है माना खुद के साथ होना। खुद के साथ होना। कई बार आम लोग ऐसा मानते कि एकांत माना अकेलापन, कोई किसी के मीन्स शायद मैं अकेली रहना चाहती हूँ तो मीन्स मेरे के साथ कोई है नहीं या कोई मेरा साथ देना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेलापन कभी ऐसा नहीं कि मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है इसलिए मैं अकेली हूँ या एकांत में हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एकांत क्या करता है, एकांत खुद को अपने होने की चेतना को जागृत करता है कि मैं स्वयं अस्तित्व में हूँ। और ये कभी एक अकेलापन कभी मजबूरी का नहीं हो सकता, ऐसे स्वयं का चुना हुआ भी एकांत हो सकता है कि चलो एकांत में कुछ क्रिएटिविटी करनी है। फिर एकांत एक माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है आत्म सुधार, है ना, सेल्फ करेक्शन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आत्म सुधार ही एकांत का सबसे पहला चरण है जिसमें हम हमारे क्वालिटीज, गुण, कर्म और व्यक्तित्व के आधार पर हमारी परिवर्तन की भूमिका को तैयार कर सकते हैं। जो आप सबसे पहले वो जरूरत है कि स्व परिवर्तन, लेकिन हम आज क्या चाहते हैं कि दूसरा परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन करूं, लेकिन एकांत हमें सबसे पहले वो सिखाता है कि हम अपना स्व परिवर्तन कैसे करें। फिर एकांत में हम वो भी सोच सकते हैं कि पास्ट के कर्मों की हमारी जो भी गलतियां हैं, पास्ट की वजह से जो गलतियां हुई है वो हमारी भविष्य में न हो, वो भी हम एकांत में ही हमारा एनालिसिस करके परिवर्तन कर सकते हैं। फिर हमारी स्किल, हमारी क्षमता और योग्यता को बढ़ा सकते हैं एकांत में मंथन करके। फिर हमारे सबसे पहला सोच का विस्तार कर सकते हैं, जो हमारी बेहद की सोच बन जाती है बाबा का बनने के बाद, वो एकांत में हम बढ़ा सकते हैं। फिर अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित बनाता है एकांत हमको, मन को अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित बनाता है। फिर एकांत है वो मजबूरी है या हमारी आवश्यकता है? अगर मजबूरी है तो हम एकांत का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो हमारी जरूरियात है। क्योंकि अकेलापन कई बार ऐसा सोचते कि अकेलापन जो जिनको अच्छा लगता है वो या डिप्रेशन में है या कोई उदास व्यक्ति है वो ही अकेला रह सकता है, ऐसा नहीं है। अकेलापन हमारी आज जरूरत भी है, क्योंकि आज के समय में लौकिक हो या अलौकिक लाइफ हो हमारी, सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं और हमने हमारी वस्तुएं और जरूरियातों को जीवन में ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया है। इसलिए हम चाहते हुए भी हमारा स्वयं का अध्ययन या चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं और विचार, खास करके विचार हमारे जीवन में इतने ज्यादा दाखिल हो गए कि हम अपने लिए अपने अंदर झांकने का हमारे पास समय नहीं मिलता है। हम साथ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, लेकिन विचारों की भीड़ तो हमारे मन में होती ही है, मेनली व्यर्थ और नेगेटिव। और जब हम अकेला भीड़ में रहते भी हम अकेलापन महसूस करते हैं मानसिक रूप से, लेकिन व्यर्थ की ट्रैफिक तो हमारे माइंड में होती ही है। इसलिए चाहते हुए भी हम अपने अंदर झांक नहीं सकते हैं, तो इसलिए आत्म केंद्रित होना बहुत जरूरी बनता है जब हम अपने आप को एकांत में रखना चाहते हैं तब। और एकांत में ही हम प्रकृति के करीब भी जा सकते हैं, प्रकृति के करीब जा सकते हैं और अपने प्रति आस्था बढ़ाने का एकमात्र माध्यम कौन है? एकांत। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को प्रेम करना होगा, अपने आप को जानना होगा। अपने आप को प्रेम कर सकते हैं तो ही हम बेहद को, क्योंकि हमारी बाबा ने कहा हर एक आत्मा के लिए हमें प्रेम होना चाहिए, तभी हम हर एक आत्मा को अपना सकते हैं, तभी हमारी बेहद की दृष्टिवृत्ति होगी। आत्मिक भाव या विश्व बंधुत्व की भावना कब हमारे अंदर जागृत होगी? जब हम अपने आप को स्वयं पहले प्रेम करेंगे तो ही हम हर एक आत्मा को प्रेम कर सकते हैं। फिर एकांत में हमारा मन स्पष्ट हो जाता है, एकदम क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। अब क्लीन एंड क्लियर मन होगा तो ही हमारी सोचने की प्रक्रिया भी सकारात्मक हो सकती है। और एकांत ही जो एक माध्यम है जो हमारी आंतरिक और बाह्य अभिव्यक्ति को परिष्कार कर सकता है, मीन्स हम संपूर्ण या स्वच्छ कैसे बन सकते हैं, वो एकांत के माध्यम से ही बन सकते हैं। और एकांत में ही हमारा जीवन है, जीवन जीने का जो सभी प्लान हम बनाते हैं वो एकांत में ही, कि जीवन हमारा कैसे सम आयोजन हो, जीवन का आयोजन कैसे करना है वो भी हम प्लानिंग एकांत में कर सकते हैं। जैसे अमृत वेला, हम बाबा कहते हैं ना पूरी दिनचर्या की प्लानिंग अमृत वेला करो, पूरा दिन आप आके साथ सफल बने, वो अमृत वाला हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारे स्थूल जीवन की प्लानिंग, लौकिक जीवन में भी कुछ भी अच्छा करना है, जीवन सफल होना, तो भी प्लानिंग हम एकांत में ही कर सकते हैं। इसलिए एक राजा विक्रमादित्य की स्टोरी है, या छोटी बोलती हूँ। राजा विक्रमादित्य तो सब जानते हैं, वो एक बार अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं और उनको गुरु को बताते हैं कि गुरुजी मुझे एक ऐसा प्रेरक वाक्य बताइए कि जिसको धारण करके मैं अपना और अपने पूरा उत्तराधिकारी के लिए सबका मार्गदर्शन कर सकूं। तो राजा विक्रमादित्य को गुरु एक श्लोक देते हैं जिसका अर्थ होता है कि हर एक मनुष्य को संध्या काल के बाद दिन के अंत में एक चिंतन करना चाहिए कि उसने पूरे दिन में ऐसा कौन सा सत्मक कर्म किया कि जो उसकी आत्मा को संतुष्ट कर सके। राजा विक्रमादित्य को यह श्लोक बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने गहराई में वो टच कर गया, तो उन्होंने वो अपने सिंहासन पर टांग दिया वो श्लोक को, और वो पूरा दिन में एक बार कोई ऐसा कर्म करते कि जो उनको रात को जब वो चिंतन करे कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया तो वो उनको संतुष्ट कर सके। तो एक बार पूरे दिन में बहुत व्यस्त थे तो वो अपना एक ये कार्य कर सके नहीं, तो जब रात को सोने गए तो उनको नींद ही नहीं आई, क्योंकि उनको जब चिंतन किया तो उनको लगा कि आज मैंने कुछ ऐसा सत्कर्म किया ही नहीं जो मैंने जिसका प्रण किया था। तो रात को नींद नहीं आती तो महल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते तो ठंडी का सीजन था, तो एक देखते हैं कि एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, तो अपना दुशाला है वो जो उसको ओढ़ा देते हैं, और जब फिर वापस महल में आ जाते हैं तब तो इनको गहरी नींद आती है। मीन्स हम अपना पूरा दिन का लेखा जो हम चिंतन रात को कर सकते हैं कि हमने पूरे दिन में आज क्या किया, तो हम हमारा ही एनालिसिस, रोज का एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने आप को परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये है एकांत का इन जनरल महत्व। फिर एकांत से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या प्राप्ति होती है? सेल्फ प्रोग्रेस नहीं, छुटकारा तो पाना ही नहीं हमको। इन जनरल हमारे एकांत से क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता या रचनात्मक आइडियाज हमें वही आते हैं ना, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो क्रिएटिविटी बढ़ती है तो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन में क्या कहते हैं, वेल नोन साइंटिस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते हैं वो बहुत व्यस्त रहते थे वो भी अपने कार्य में। तो वो भी कहते हैं कि वो तो अपना कार्य नियमित रूप करते ही है रोज बरोज का, लेकिन वो कहते कि कभी उनको अचानक समुद्र तट पर अकेले सैर करने की इच्छा हो जाती है तो वो चल पड़ते हैं, और तब वो अपने भीतर की अपने आप को अंदर से सुनते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कई बार उनको ऐसा कि मेरा काम नहीं बन रहा है तो वो काम सब कुछ काम छोड़कर लेट जाते हैं और छत की ओर देखते रहते हैं, और वो तब उनके अंदर अंदर क्रिएटिविटी आती है। तो मीन्स कितना भी व्यस्त हम क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए कुछ क्षण निकाले तो उसमें से भी हम काफी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और यूएस में एक कंपनी है जिसका नाम है प्रोमेगो, वो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, वो बायो कुछ प्रोडक्ट करती है। तो उन्होंने एक अपनी कंपनी में वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्पेस बनाया, थर्ड स्पेस इसे बोलते हैं, वहां वो लोग नेचुरल रेट में सॉलिट्यूड क्षण पास करते हैं। मीन्स एकांत में वो दिन में वर्क में भी वर्क करते कभी भी टाइम निकालते हैं, वो सॉलिट्यूड थर्ड स्पेस है, वो मेडिटेशन करके वो अपने आप को क्रिएटिव बनाते हैं। और उन्होंने रिजल्ट भी पाया कि वो वर्कर्स था उनकी क्रिएटिविटी में और उनके आउटपुट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि वो वर्कर्स है सब बिल्कुल व्यस्तता के पीरियड में भी वो अपने लिए टाइम निकालते थे, थर्ड स्पेस में जाकर मेडिटेशन करते थे, तो वो भी एक लाभ मिलता है। फिर मेमोरी पावर बहुत इम्प्रूव होता है। डॉक्टरों का कहना है कि हर एक मनुष्य को खुली हवा में वॉकिंग करनी चाहिए, करते हैं डॉक्टर ऐसा कहते हैं, और साइंटिस्टों ने सब मानता है, साइंटिस्टों का ऐसा रिसर्च किया हुआ है उन्होंने कि जब मनुष्य टहलता है खुली हवा में तब वो तन मन से तंदुरुस्त बनता है, साथ साथ उसकी जो ब्रेन में जो मेमोरी सेंटर होता है, जो याददाश्त को मजबूत बनाता है, उसका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो एकांत से हमारा मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होता है, दिमाग भी तेज बनता है और पॉजिटिविटी तो बढ़ती ही है। तो ये था कुछ इन जनरल एकांत का है। अभी हमारी अलौकिक लाइफ और अलौकिक लाइफ, और हमारी तो मोस्ट ऑफ अभी अलौकिक लाइफ है ना, तो अलौकिक लाइफ में एकांत का क्या महत्व है? तो अलौकिक लाइफ में एकांत माना गया कि एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना माना शिव बाबा है ना, हमारे लिए तो अल्टीमेटली शिव बाबा ही है, तो एक के अंत में खो जाना माना एकांत। तो किसी ने कहा है कि अब ज्ञान की चर्चा करो या वार्तालाप करो तो हमारी बुद्धि मूल्यवान होती है, उससे बुद्धि की IQ बढ़ता है, लेकिन ज्ञान का चिंतन करना हो तो एकांत ही चाहिए। इसमें कबीर का एक दोहा ही है, बहुत सुंदर है, कि चर्चा करूं तब चौहिते, ज्ञान करूं तब दोई, ध्यान करूं तब होई अकेला और न दूजा कोई। जब किसी विषय की चर्चा करनी है तो आप 3-4 लोग कर सकते हैं साथ में मिलकर, लेकिन ज्ञान की चर्चा करनी है उसके लिए तो 2 भी काफी है, लेकिन ज्ञान का ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करने के लिए तो तुम एक ही काफी हो, तब आपके आसपास और कोई नहीं होना चाहिए। तो एकांत का महत्व है ज्ञान हमारे लिए, तो ज्ञान का चिंतन मनन है ना, हमारे लिए मनन चिंतन ज्ञान के आधार से हम हमारा परिवर्तन करते हैं, कि ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान की अवस्था है, सबसे पहले ज्ञान का पठन करना है तो ही हम अध्ययन कर सकते हैं, पठन के बाद अध्ययन करना है, उसके बाद उसका मनन चिंतन, मनन चिंतन करेंगे तो हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी, सुधरती जाएगी। अब मनन चिंतन करेंगे तभी हमारी अवस्था लगन में होगी, लगन के बाद आएगी मगन, तो ये अवस्था ही हमें एक की ओर ले जाती है। तो हमारा जो एकांत है वो हमें मुझ से मैं को मिलवाता है, और मैं से मेरा बाबा तक हम पहुंचते हैं, तो वही हमारा एकांत है। स्थूल एकांत की शायद हमें जरूरत नहीं भी हो, कि हर बार हमें स्थूल एकांत मिले ऐसा जरूरी नहीं है ना, जैसे लौकिक लाइफ वालों के पास समय नहीं है वैसे अलौकिक लाइफ वालों के पास भी समय नहीं है, नहीं है ना, सब कहते हैं सबसे ज्यादा क्या है हमारी कमजोरी के समय नहीं है, तो हमारे पास भी समय नहीं है, तो स्थूल एकांत तो मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी मिले तो भी हमें एकांत अपने आप क्रिएट करना होगा स्वउन्नति के लिए। इसलिए बाबा कहते ना सवेरे उठकर या रात को जाग कर भी याद कर, ब्रह्मा बाबा करते ही थे ना, जागती ज्योत कहते थे ब्रह्मा बाबा को, कब कोई भी 1:30 बजे भी कोई उठता था, हमारी दीदी कहती थी हमारी कि 1:30 बजे भी उठते देखते तो बाबा जगे ही हुए थे, याद में बैठे होते, तो बाबा जागती ज्योत थे, तो हमें हमारे लिए टाइम निकालना ही होगा। तो ब्राह्मण जीवन में एकांत माना एक के अंत में खो जाना, और ज्ञान के आधार से चिंतन मनन करके हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो हमारा टाइटल क्या है, एकांत में हम ज्ञान भी एक हमारी भी एक साधना है ना, स्पिरिचुअल साधना है हमारी, आत्मा की भी साधना ही है। तो हमारी साधना है वो हम राजऋषि कहलाते हैं ना, हम हद के सन्यासी है, और जो संसार में कई ऋषि मुनि हो गए वो भी तपस्या ही करते थे ना, वो भी एकांत में करते थे। देखो सब कितने भी अच्छे से काम हुए, जो भी संसार में वैज्ञानिक हो गए, रचनाकार हो गए, चिंतक हो गए, कलाकार संगीतकार, सब ने अपना बेहतरीन आउटपुट कहाँ दिया है, एकांत क्षण में ही दिया है। और ऋषि मुनि जो द्वापर से ही भक्ति शुरू हुई है, तब से ही ऋषि मुनियों ने तपस्या शुरू की है, तो उन्होंने एकांत का ही मार्ग चुना था ना, अपनी तपस्या मीन्स अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, उनको जो भी प्राप्त करना था वो मार्ग क्या चुना था, एकांत चुना था उन्होंने। लेकिन उनका एकांत और हमारा एकांत काफी अलग है। उन्होंने एकांत के लिए क्या जरिया अपनाया, घर गृहस्थी छोड़ दिया, अपनी लौकिक सभी जिम्मेवारियों को छोड़ा, यहाँ तक अपने परिवार को भी छोड़ दिया। छोड़ के कहाँ गए, जंगल में, सबसे पहले जंगल में गए, जंगल में उन्होंने अपनी तप साधना की, और उनकी प्राप्ति क्या हुई, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया, आसपास के वायुमंडल को परिवर्तन किया, जंगल में कितने भी हिंसक प्राणी आते थे वो भी उनसे डरते नहीं थे, क्योंकि उनकी असर उनको नहीं होते, इतने तलीन हो जाते थे कि वो प्राणी की प्रवृत्ति हिंसक वृत्ति को वो चेंज कर देते थे। तो हमारा भी एकांत कहाँ है, हमारी साधना भी इस जंगल में है ना, कलयुग बाबा के क्या कहते, कांटों का जंगल है, भालू होते ही नहीं है। तो ये हम भी कांटों के जंगल में ना, हमें वो जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम कलयुग के कांटों का जंगल उसी बीच में रह के, उन्होंने जो त्याग, हमें लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी का त्याग नहीं करना है ना, हमें यहाँ हमारी जिम्मेवारी के साथ रह के साधना करनी है। तो वो हमारी एक साधना एकांत में है, वो लोग तो वहां जाते हैं जंगल में, लेकिन हम कांटों के जंगल में बीच रहकर बाबा के ज्ञान के आधार से, बाबा के याद के आधार से हम अपनी प्राप्तियां करते हैं। दूसरा है वो लोग जाते हैं पहाड़ों की गुफाओं में, प्रकृति की गोद में भी जाते हैं ना साधना करने के लिए, हिमालय पे भी जाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं, शरीर को कष्ट देते हैं लेकिन अपनी साधना तो करते ही हैं। तो हमें एक हमारी साधना के इस समय पहाड़ों की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही प्रकृति की गोद में जा सकते हैं पहाड़ों की गोद। लेकिन हम हमारे अंतर मन की जो गुफा है वहां हम जाते हैं। जितना बाह्य जगत विशाल है और हमारा अंतर जगत भी इतना ही विशाल है, तो हमें हमारे अंतर जगत की गहराई में जाकर साधना करनी है और वो एकांत में ही हो सकता है। तब हमारी एक एक गुण जो है हमारी शक्ति बनती है, एक एक गुण की गहराई का अनुभव करेंगे अंतर मन की गुफा में जाकर। तब हम पहाड़ में नहीं जाना है, लेकिन पहाड़ जैसी समस्याओं में भी हम अटल अडोल रह सकते हैं। पहाड़ जैसे अचल अडोल रहता है ना, वैसे हम स्थिति अचल अडोल बना सकते हैं, वो हलचल में नहीं आता। इसलिए वो अचल गर्व क्या है, हमारी स्थिति का तो यादगार है ना, कि अंतर मन की गुफा में जाकर अपने आपको इतना शक्तिशाली बनाए कि पहाड़ जैसी समस्याओं में भी हम अचल रह पाए। और तीसरा, वो प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो हम तो यहाँ प्रकृति जीत बनते हैं। हमारी साधना से प्रकृति को भी हम हमारी सहयोगी और दासी भी बना सकते हैं। तीसरा है, वो लोग साधना में ऐसा भी करते हैं ना, कठोर एक पांव पर खड़े रहकर अपने लक्ष्य तक प्राप्ति, जब तक प्राप्ति नहीं हो वो अपना एक पांव पर खड़ा रहकर भी वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हमें कौन सा पांव पकड़े रखना है, हमारा एक शक्तिशाली संकल्प ही हमारी साधना के लिए काफी है। एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित होकर एक के अंत में खो जाना, वही हमें सब कुछ प्राप्ति होती है। तो वो एक टांग पर खड़े रहते हैं और हम एक संकल्प में टिक कर उसकी ही मनन चित्र करके हम हमारी सर्व प्राप्ति पा सकते हैं। और दूसरा, भक्ति मार्ग में अनुष्ठान भी कहते हैं लोग, एक ही स्थान पर बिना स्थान पर उठे हुए 8 घंटे या ऐसा 4 घंटे या 8 घंटे वो लोग साधना तपस्या करते हैं। मुझे तो इतना पता नहीं है क्या है, लेकिन सुना है ऐसा अनुष्ठान में वो लोग 8-8 घंटे तक एक ही आसन पर एक ही स्थान पर स्थित रह के बीच में उठना भी नहीं है, ऐसी तपस्या करते हैं। तो हमें बाबा ने क्या कहा है हमारे भी कि कम से कम आप बच्चों का घंटा 8 घंटा योग होना चाहिए। तो वो ये हमारी तपस्या ही है ना। सपोज 8 घंटा कंटिन्यूस ना भी मिले तो भी हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं कि तो हमारी वो भी साधना एकांत में ही होती है, है? वो नहीं चलेगा एक दिन में 8 घंटा। तो वो ये हमारी साधना हो गई और उनकी साधना कि वो लोग सिद्धि के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा सिद्धि के लिए घर बारे कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, या वो लोग कहलाते सिद्ध पुरुष क्योंकि अपनी सिद्धि को तप के बल से प्राप्त करते हैं, तो हमें हमारी सिद्धि चाहिए तो सिद्धि के लिए 2 चीज आवश्यक है, कोई भी सिद्धि के लिए, एकांत और एकाग्रता। तो 2 चीज आवश्यकता है ना, एकांत एकाग्रता। एकांत में ही हम हमारी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं और एकांत में ही हम एकाग्रता का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए एकांतवासी बनना। आज हम हमारी सिद्धि क्यों नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा पुरुषार्थ क्या है, लास्ट समय हमारे संकल्पों की शक्ति ही हमें पार करेगी ना। हम सिद्धि क्यों नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा संकल्प रूपी बीज ही कमजोर होता है। संकल्प रूपी बीज कमजोर होता है, इसलिए हम एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर सकते, एकांतवासी बनने का अभ्यास नहीं कर सकते। और साथ साथ अगर संकल्प रूपी बीज कमजोर है और हम उसमें दृढ़ता रूपी निश्चय का बल दे, जल दे, तो वो संकल्प शक्तिशाली बन सकता है। तो वो हम एकांतवासी और एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो ही हमारा संकल्प रूपी बीज है वो शक्तिशाली बनेगा। अगर बीज शक्तिशाली है तो जो फल मिलेगा वो भी शक्तिशाली ही मिलेगा। तो एकांत का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा, एकांत प्रिय बनना पड़ेगा या एकांतवासी बनना पड़ेगा। तो एकांतवासी और एकांत प्रिय बनने के लिए हमें लौकिक लाइफ में क्या करना पड़ेगा, अलौकिक लाइफ में, सॉरी, डिटैचमेंट। तो सबसे पहले तो और सब तरफ से बुद्धि योग को हटाना पड़ेगा। स्थूल एकांत में जाना है, लेकिन मन का एकांत भी तो जरूरी है साथ साथ, जरूरी नहीं है स्थूल एकांत हो तो मन का एकांत हो तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि तो स्थूल एकांत तो होना ही है, वो तो है ही, लेकिन स्थूल एकांत हो तब मन का भी एकांत, तो वो तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मन में तो ट्रैफिक होता ही है ना हमारे, वो तो हमारे हम स्थूल में एकांत हो या नहीं हो, स्थूल भीड़ में हो लेकिन मन शांत हो तो एकांत ही है ना। मन में ट्रैफिकों की भीड़ नहीं हो वो भी एकांत ही है, लेकिन स्थूल एकांत हो तब मन का एकांत हो ही, वो जरूरी नहीं है। लेकिन वो अभ्यास हमें एकांतवासी बनकर करना है कि हम स्थूल में हो एकांत में हो तो भी मन का भी एकांत हो। तो इसके लिए और सब सब और संबंध भी एक के साथ ही होगा तो ही हम एकांत का अनुभवी बने सकेंगे ना। और सब के साथ संबंध तोड़ेंगे या छोड़ेंगे तभी एक के संबंध में हम लीन होंगे तो ही हम एकांत के अभ्यासी बन सकते हैं। अगर सब संबंध सब की तरफ हमारी रगे रही तो एकांत में हम बैठ ही नहीं सकते। इस बात एक के अंत में खो जाना है हमें। अगर एक के अंत में खोना है लेकिन बुद्धि की रग अलग अलग जगह है तो एक के अंत में खो ही नहीं सकते। तो सब संबंधों से जब सर्व संबंधों की रसनाई एक से लेनी है तो और संबंधों में हमें रस लेना ही नहीं है ना। तो जब जिसका एक के साथ सब कुछ होगा कनेक्शन लव प्यार संबंध उसका ही एकांत का अभ्यास ही अच्छा होगा। अगर एकांत में रहते भी हमारी बुद्धि वहां वहां जाती है तो एकांत कैसे काम कर। तो जब एक के साथ हमारी लगन होगी एक के साथ सब संबंध होंगे एक सब संबंधों का रस एक के साथ होगा तो हम एकांत के अभ्यासी एकांत वासी एकांत प्रिय बन सकते हैं। तो कहते बाबा कहते ना मुरली में लिखा कि एक की याद में एक के रस में जब हम खो जाएंगे तभी हम एक रस बन सकते हैं। तो वही तो अभ्यास करना है ना, एक ही रस में खोना है, एक की ही याद में, एक की संकल्प में, एक की याद में, एक की रस में खोना है तब हम एक रस बन सकते हैं। और हमारे अल्टीमेट क्या है, एक रस स्थिति बनाना है ना। तो जब हम एक की याद में रहेंगे तो स्थिति भी हमारी एक रस रहेगी। तो एक रस रहेंगे तो हम अचल अडोल बनेंगे। इसीलिए हमारी स्थिति बनना कि हमारी स्थिति का ही यादगार है वो अचल घर है। कैसी भी परिस्थिति आती है, कैसी भी समस्या आती है, कैसी अलौकिक लाइफ में भी आती है परिस्थितियां समस्या विधना अलौकिक लाइफ में भी आती है, ऐसा नहीं कि लौकिक में ही आती है, अलौकिक में भी आती है। तो तब हमारा संबंध एक से नहीं जुटा होगा तो हम अपने आप को बाहर नहीं ला सकेंगे उस परिस्थिति से समस्या से। तो एक के साथ ही सब संबंधों का रस लेना, एक के साथ ही सब कनेक्शन होना तभी हम एकांत प्रिय एकांतवासी बन सकते हैं। जैसे देखते हैं ना हम साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी नई इन्वेंशन करना है तो आविष्कारक किसको पसंद करते हैं, एकांत को ही पसंद करते हैं ना। वो एकांत में ही सब अपने अपना घर बार सब छोड़ दिया होता है, लैब में ही पूरी जिंदगी चल जाती है। किसी बार दो दो महीने तीन महीने तक वो लेबोरेटरी में ही रहते हैं। तो साइंटिस्ट भी अपनी आविष्कार करता है खोज के लिए, एकांत को ही पसंद करता है तभी वो कुछ क्रिएटिव दे सकता है किसी को। तो वो लोग अंडरग्राउंड भी बन जाते हैं ना कई बार, जितनी शक्तिशाली हो जितनी बड़ी खोज करनी है उतना वो अंडरग्राउंड बन जाते हैं। तो एकांत माना अंडरग्राउंड हो जाना और एकांत माना मीन्स एकाग्रता में खो जाना। और एकांतवासी बनने के लिए भी कुछ धारणाएं चाहिए हमारे अंदर, या एकांतवासी या एकांत प्रिय बनने के लिए कुछ धारणा चाहिए, वो क्या होगी? सबसे पहली अंतर्मुखता, शेष चिंतन मनन की शक्ति, उसके लिए ज्ञान का अध्ययन भी चाहिए, फिर व्यर्थ से परेज मुख का मौन। तो अब मन का मौन नहीं चाहिए, को कहते हैं मौन या ना मुख और मन दोनों का मौन, लेकिन एकांत में अगर मन का भी मौन आ गया तो हम परम धाम में ही चले जाएंगे। तो खाली मुख का मौन, मन का मौन नहीं, अंतर्मुखता के साथ साथ हाँ। तो मौन चिंतन तो है ना, माइंड तो चलता है ना, माइंड हमारा कभी शून्य नहीं होता है ना। एक अंतर्मुखता साथ साथ गंभीरता भी चाहिए, गंभीरता और रमणीकता। ऐसा नहीं कि हम एकांत में चले जाए गंभीर, किसी से मिलना भी नहीं, कोई सामने आए तो हमें हंसना भी नहीं है, किसी के साथ बातचीत भी नहीं करनी, एकदम सीरियस पर्सनैलिटी बन जाना, ऐसा नहीं। गंभीरता और रमणीकता साथ साथ हो, ऐसा नहीं कि चलो गंभीर रहेंगे तो ये एकांत का अनुभव कर सकेंगे। मिलनसार बनना है हमें, सबके साथ संस्कार मिलन कहते ना, संस्कार स्वभाव मिलान है तब मिलनसार बन सकते। एकांतवासी बन जाना मीन्स गंभीर बन जाना ऐसा नहीं है। ये सब क्वालिटीज होगी हमारे में धारणाएं तो हम एकांत का अनुभव कर सकते हैं। और एकाग्रता में कैसे स्थित हो सकते हैं एकांत में भी, वो स्टेजेस बताए ना, ज्ञान का पठन, चिंत अध्ययन, मनन, चिंतन, लगन, मगन, ऐसे धीरे धीरे हम एकाग्रता की ओर चाह सकते हैं, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट भी कोई नवा आविष्कार करते हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना उसमें उन लोगों को, तो वो इसलिए एकांत को पसंद करते हैं। एकाग्रता ही तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, एकाग्रता माना एक ही संकल्प में टिक जाना, कहते हैं एक के अंत में खो जाना, माना एक ही शक्तिशाली संकल्प शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, तो हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। जब एकाग्रता हमारी इतनी अच्छी होगी तब चारों ओर हंगामा होते हुए भी हम उस हंगामे में हम अटल रहेंगे, क्योंकि अंत में बाबा ने बोला ना अंत में तो चारों ओर का वार होगा ना, अंत तो होगा तब होगा ही, अभी बहुत नजदीक होने वाला है क्योंकि समय बहुत कम है ना, हलचल तो कभी भी आ सकती है, वो तो बाबा ने नहीं बताया है तो जब अंत का समय आएगा चारों ओर की हलचल होगी तब हमारा ये एकांत और एकाग्रता का अभ्यास नहीं होगा तो हम भी उसमें हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में हम एकांत में बैठ गए चार पांच घंटा तो अभ्यास हो जाएगा या हम उसको पार कर लेंगे, नहीं, एकांत और एकाग्रता की शक्ति के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी चारों जब हंगामा होगा तब हम अपने आप को उसमें भी अचल अडोल रख सकेंगे। और चारों ओर हंगामा हो क्योंकि साइलेंस की स्थिति होगी या कुछ छोटी मोटी परिस्थिति होगी उसमें तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं या संभाल भी लेंगे, लेकिन जब चारों ओर हंगामा हो उस हलचल की स्थिति में भी हम अपने आप को एकांत वासी बना सके या अपने आप की एकाग्रता को बढ़ा सके, एकांत वासियों का एकाग्रता का अभ्यास कर सके, तो ही है हमारा वो महान पुरुषार्थ। बाबा ने वाणी में लिखा है कि कैसी परिस्थिति हो कैसे भी हलचल वाली स्थिति में भी आप अपना अभ्यास कर सको वही है महारथियों का महान पुरुषार्थ। तो अभी यही पुरुषार्थ की आवश्यकता है ना, ये हलचल तो कभी भी होगी, ब्राह्मण लाइफ में भी होती है ना हलचल, ऐसा नहीं है जो बाहर लौकिक में लेते हैं उनको ही हलचल आती है, जब हम ज्यादा करते हैं पुरुषार्थ तो हमें हलचल भी ज्यादा आती है बाबा ने कहा है ये सेंटेंस बोले है बाबा कि एकांतवासी होकर हंगामे वाली परिस्थिति में भी अब एकांतवासी होकर एकाग्रता का अभ्यास से अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, ये है महान पुरुषार्थ महारथियों का। तो हम भी महारथी तो है ही ना क्योंकि बाबा ने हमें सतर टाइटल क्या दिया है, महान आत्मा है आप। और एकांत में रहने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं और महान आत्मा, ये भी वाणी में लिखा है, किसी ने कहा है कि महान आत्माओं का भाग्य है कि वो एकांतवासी बन सकते हैं, तो हम महान आत्मा है ही ना, बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि हम महान आत्मा है, हम अपने को समझे या नहीं वो हमारे पर है, लेकिन बाबा का टाइटल तो है ही कि हम महान आत्मा है सबका अपना अपना है ना, कि बाबा ने तो हमें कितना ऊंच टाइटल से सेवा, लेकिन हम ही कहीं अपने आप को हीनता क्यों ले जाते, कभी कुछ भी हो जाता है तो मुझसे नहीं होगा, मुझे भी जब मुझे ये दिया था टॉपिक तब मुझे लगा था कि मैं कैसे करूं कैसे करूंगी ऐसा अब तक हो रहा था कि मैं कैसे करूंगी, काफी मेहनत की मैंने, लेकिन फिर भी एक अंदर डर था कि डर था ऐसा, क्योंकि पहली बार मेरा इतने लोगों के बीच में बोलने का हुआ है, तो वो हम ही अपने आप को हमारी क्षमता नहीं है ऐसा समझ लेते कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं होगा, बाबा ने तो हमें कितना उच्च टाइटलों से नवाजा है ना, अगर हम वो याद रखे तो ही वही शक्ति समान की शक्ति से ही मैं इतना आगे बढ़ी हूँ मास्टर सरस्वतीवान हूँ, वो मेरा मीन्स पहले से वो समान मेरा अक्सी रहा है, मास्टर सरस्वतीवान हूँ, दिन रात मेरा अभ्यास उस पर रहता है और हम जितना जितना एकांतवासी बनेंगे उतना ही हमें टचिंग भी मिलती रहेगी बाबा की, कैचिंग पावर हमारा बढ़ता है, टचिंग और कैचिंग एकांत से ही मिलता है। और आगे क्या होना है वो वर्तमान जैसा क्लियर हो जाएगा कि भविष्य में क्या होना है, जैसे हम कहते ना कई बार कुछ भी होता था कि ड्रामा में जो होगा वो होगा, लेकिन अभी हम ऐसा अभ्यास करेंगे एकांतवासी बनने का और एक ही संकल्प पे टिकने का, तो ड्रामा में जो होगा वो होगा नहीं, हम वो कह सकते हैं कि यही होगा और वो होगा, हम ऑथोरिटी से कह सकेंगे कि ड्रामा में ये होगा और वो होगा ही, नॉलेज के पावर से, मैं स्पष्टता के पावर से हम ये कह सकेंगे कि यही होगा और वो होगा, इतनी हमारी कैचिंग और टचिंग इम्प्रूव हो जाएगी। जो द्वापर से, इसलिए भक्ति मार्ग में जितने भी सन्यासी साधु हो गए हैं वो लोग सिद्ध पुरुष कहलाते थे, वास्तव में वो सिद्धि हासिल करते थे ना, इसलिए वो जो बोलते थे वो वरदान बन जाता था। सो किसी को श्राप देते, इसलिए ऋषि मुनियों का क्रोध, किसी वो चाहते थे वो लोग की ऋषि मुनि कोई भी वो क्रोधित न हो, वो श्राप दे देते हैं, वो जो बोलते थे वो हो जाता था, उनके संकल्प में सिद्धि होती थी। तो हम तो राज ऋषि हैं, तो हमारे संकल्प में भी ऐसा सिद्धि स्वरूप बनने चाहिए। वो लोग अपनी तपस्या साधना से अपना इतना बल जमा करते थे कि वो जो बोलते थे वो हो जाता था, और द्वापर से जो भी द्वापर में भक्ति थी, शुरू शुरू में भक्ति भी सतो प्रधान थी, शक्तिशाली थी, तभी जो भी शास्त्र लिखे गए वो लोग शास्त्र कहाँ लिखते थे, कब कैसे लिखे गए, कि जो वो ऋषि मुनि है वो एकांत में साधना करते थे, तपस्या करते थे, तब उन लोगों को आने वाली दुनिया कैसी होगी उनका ज्ञान हो जाता था। इतनी सिद्धि वो हासिल कर सकते थे कि वो आने वाली दुनिया में क्या होने वाला है वो उनको ज्ञात हो जाता था। तो उसी ज्ञान के अनुसार उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उसी शास्त्रों का हमने अपने अपनी बुद्धि अनुसार सबने अलग अलग एनालिसिस किया है। इसलिए कथन बहुत अच्छी पंक्ति है कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा रोटी खाएगा। तो वो आज वो समय है ही ना, कितने साल पहले ये बात लिखी गई थी, तो आज वो समय आ गया है ही ना। तो वो उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो तपस्या के बल से आने वाली दुनिया क्या होगी वो जान सकते थे। तो बाबा बोलते हैं ना कि आपकी साधना तपस्या ऐसी हो, आपकी बाबा की याद ऐसी हो कि आपको क्लियर टचिंग हो कि धामा में ये होगा, वो आप कह सकते हो। और जितनी जितनी हम एकाग्रता का अभ्यास करेंगे उतनी उतनी हलचल भी आएगी ना, तो हलचल में भी हमें अचल रहना है, उसके लिए क्या बनना है, अंडरग्राउंड बनना पड़ेगा, एकांतवासी और एकाग्रता। देखो कितनी भी नई नई इन्वेंशन हुई है वो एकाग्रता अंडरग्राउंड बनकर ही हुए, साइंटिस्ट जितने भी हुए, अच्छी जितनी शक्तिशाली खोज हुए उतने ही वो अंडरग्राउंड बन गए हैं। तो हमें कौन सी शक्ति चाहिए, साइलेंस की शक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा है ना साइंस और साइलेंस साथ साथ चलेंगे। साइंस अपना घमंड करता है, लेकिन हमें हमारी शक्ति घमंड नहीं करना है, हमें हमारी शक्ति को प्रूव करना है। साइंस घमंड करता है अपनी शक्ति पर हमें हमारी शक्ति को प्रूव करके दिखाना है कि साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से भी ऊपर है, क्योंकि साइंस की शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ही पावरफुल बनना पड़ेगा। तो साइलेंस की शक्ति है वो अनुभूति करने की शक्ति है, क्योंकि कोई जो भी हमारे सामने आए वो अनुभव करके जाए कि उनके पास कुछ है, इतना हमें हमारा साइलेंस का अभ्यास करना, एकांत का अभ्यास करना है कि सामने वाला आए तो उनको लगे कि इनके पास कुछ है। वो लोग अनुभव करके, ये बाबा साकार में जब बाबा थे तो अंतिम समय में, दीदियों से सुना है मैंने, तो अंतिम समय में वो एकदम उपराम स्थिति में थे। लास्ट के एक दो साल तो बाबा पूरे पूरे उपराम थे, बहुत वाचा में बहुत कम आते थे। कुछ भी बात करनी हो, डायरेक्शन देनी हो, बस अभी अभी बात की, अभी अभी चुप हो गए, गुम अवस्था में हो जाते थे कि यहाँ है ही नहीं, ये कहीं और जगह है। सामने वाले की संकल्प भी ब्रेक लग जाती थी, बाबा इतना उपराम हो जाते थे कि साइलेंस, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, बाबा अपनी साइलेंस से ही सब कुछ कह देते थे, ऐसा लगता था। और कोई समाचार सुनाना आता था, कोई भी ब्राह्मण आत्मा, तो बाबा एक घंटे का समाचार भी 5 मिनट के सार में सुनते थे। तो इतनी बाबा ने अपनी स्थिति संपन्न बनाई थी कि बच्चों को भी खुश कर दिया और अपने एकांत और अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया था बाबा ने। तो वो भी क्या, बहुत साल का अभ्यास ही था बाबा का भी। तो बाबा में कहते हैं बहुत साल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का और बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तभी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति को अनुभूति कराना है। जो लोग वाणी की शक्ति से तो हम कोई को दिमाग तक हम कर सकते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति हो अनुभूति कराने की शक्ति है। लेकिन आज हम सब तो क्या कहते हैं कि हमारे पास एकांत में बैठने का समय नहीं है, या अंतर्म की स्थिति का अनुभव करने का हमारे पास समय नहीं है। हमारी वही सबसे बड़ी है ना प्रॉब्लम कि हमारे पास समय नहीं है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, सबने सुनी होगी शायद, कि एक प्रोफेसर है, वो एक बार अपनी क्लास में गए स्टूडेंट के सामने एक ग्लास का जार लेकर, सबने सुनी होगी शायद, ग्लास का जार लेकर गए, फिर उन्होंने टेबल पर रखा, फिर उस काफी कुछ चीज थी उनके पास, स्टूडेंट्स को बोला, बड़े बड़े वो गोल्फ के बोल दिए कि इसमें डालो। स्टूडेंट्स ने गोल्फ के बोल से जार में डाले, जब पूरी भर गई बाद स्टूडेंट्स बोले कि अभी इसमें कुछ नहीं जा सकेगा। तो प्रोफेसर देते हैं, टीचर उनको देते हैं मार्बल छोटी छोटी लखोटी अभी वो डालो, तो वो भी उसमें समा गई। फिर प्रोफेसर ने बोला कि स्टूडेंट बोला अभी सर इसमें कुछ नहीं जा सकता, तो प्रोफेसर ने उनको रेत छोटी छोटी रेत होती है वो दी, तो वो भी उसमें समा गई। फिर स्टूडेंट बोला अभी उसमें कुछ नहीं जाएगा, फिर प्रोफेसर ने क्या दिया पानी, तो वो भी उसमें भर गया। तो कहने का भाव क्या है, क्या जब हमारी ब्राह्मीण लाइफ हो बैठे ना सेवा की बहुत प्रवृत्ति बढ़ गई है, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करेंगे तो हमारी सेवा की जो दिनचर्या है, हमारी जो सेवा है उसमें तो हम वो सेवा तो करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे काम भी कर ही लेते हैं ना साथ में। संडे को जूस होगा गन्ने का तो हम जहाँ जाएंगे वो तो हम तो पियेंगे, दूसरों के लिए भी ले आएंगे। तो हमें छोटे छोटे काम भी हम कर लेते हैं ना, कर ही लेते हैं। तो फिर हम एकांत में समय नहीं मिलता, वो हमारा एक बहाना है नहीं करने का। जब महत्व समझ लेंगे कि एकांत क्या महत्व है तो हम कर लेंगे, जब तक महत्व को नहीं समझते हैं हम तब तक वो नहीं चीज अपनाते हैं। देखो शुरू में जब ट्रैफिक कंट्रोल का था नियम बना, बाबा के दर्शन के बाद ट्रैफिक कंट्रोल बना है ना, ट्रैफिक कंट्रोल शुरू में बना था तब सब लोग कहते थे कैसे होगा, कैसे कर सकेंगे, सेवा की वृत्ति हमें इतनी बड़ी, इतने बिजी रहते हम ट्रैफिक कंट्रोल कैसे कर सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गया, प्रैक्टिस करते गए तो आज हो रहा है ना, अभी तो एक एक घंटे का भी ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ता है। तो जब हम महत्व समझ लेते हैं तो वो बात को कर लेते हैं, जब तक नहीं समझते तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने एक वाणी में लिखा भी है कि ऐसा कौन है कि जिसके पास समय नहीं है थोड़ा तो क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि वाणी की सेवा का समय नहीं है, तो अभी कौन सी सेवा रही हुई है, मनसा सेवा। मनसा सेवा के पास को उसके लिए कोई नहीं कहता कि मेरे पास समय नहीं है, कि मनसा सेवा ही अब हमारे पास रही हुई है। और मनसा सेवा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना। तो शुभ भावना हो क्या है, एक शक्तिशाली संकल्प है शुभ भावना, शक्तिशाली संकल्प है। अगर इसी संकल्प में हम स्थित हो गए तो हमारी शुभ भावना बहुत कुछ कर सकती है। और शुभ भावना यानी कैसी भी परिस्थिति में हम स्थित हो जाए, जैसे मास्टर बीज स्वरूप स्थिति है वो सबसे शक्तिशाली स्थिति है ना हमारी। जैसे वैज्ञानिक लोग जितनी बड़ी शक्तिशाली चीज बनाते हैं इतनी छोटा स्वरूप होता है उसका। आज अणु बम है, न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है, जितना छोटा बम उतनी उसकी शक्ति ज्यादा। तो हम हमारी स्थिति में ऐसा करें, मास्टर बीज स्वरूप स्थिति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना, उसका अभ्यास करके हम हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को एक बहुत तेजी से नाश कर सकते हैं। तो वो स्थिति बनानी है, या अव्यक्त स्थिति, फैसा स्थिति, जिससे हम लाइट माइंड सबको दे सके। जितनी छोटी चीज उतना ज्यादा शक्तिशाली। तो हम हमारी स्थिति को ऐसा बनाए, मास्टर बीज स्वरूप स्थिति का अभ्यास करें या लाइट माइंड हाउस स्थिति का अभ्यास करें। तो ये सब अभ्यास करने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एकांत ही है। तो एकांत में लास्ट में इतना ही कहूंगी, और बाबा ने भी कहा है समय रोज 5 केले खाने हैं, पता है ना सबको कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, इसलिए अकेले में अकेले बाप को अकेला बनकर याद करो। तो 5 केले तो रोज कोई सब कुछ कोई खा ही सकते हैं ना, इसमें कोई कैल्शियम बढ़ेगा या डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगा ऐसा किसी को नहीं है, वो तो हम खा ही सकते हैं। तो अंत में एक छोटी 4 लाइन है कि कोशिश करिए कुछ समय एकांत में जाने की, प्रकृति के बीच और खुद के अंतर झांकने की, सभी आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों से दूर एक विचार में टिकने की, फिर देखिए क्या अद्भुत पाते हैं आप जब आप एकांत में जाते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम है वीणा, मैं गुजरात जामनगर से हूँ और बाय प्रोफेशनल डेंटिस्ट हूँ, और यहाँ 1 महीना ग्लोबल हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट में सेवा के लिए आई थी। तो कल ही जाना है, और कल सुबह ट्रॉमा सेंटर में वैसे ड्यूटी है, वैसे भर्ती करने हैं, लेकिन अभी एक डॉक्टर छुट्टी पड़े तो ट्रॉमा सेंटर में डेंटल डिपार्टमेंट में वहां भी सेवा देनी है और शाम को भर्ती करनी है। तो इस बार का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, हर बार 3 साल से आती हूँ यहाँ, इस बार मैंने बहुत कुछ अपने में, मेरी एकाग्रता ही इम्प्रूव हुई, मेरा कॉन्सेंट्रेशन योग में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ। तो इसलिए ज्ञान तो मुझे ऐसे बचपन में ही मिल गया था परिवार में फिर, लेकिन छूट भी गया था, कैसे छूट गया पता नहीं, वो कैसे आ गया वो भी पता नहीं वापस, लेकिन जब 7 साल से तो कंटिन्यूअस, जब से बाबा की बनी 2009 दिसंबर में, तब से एक दिन भी मेरी मुरली मिस नहीं हुई है। तब से 7 साल हुए बाद में तो पूरा पक्का, एक दिन भी बाबा के 7 साल में एक दिन भी मेरी मुरली सेंटर जाना मिस नहीं हुआ है। मेरी माता जी है और मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी टीचर है, कुमारी है, 3 जने ज्ञान, मामा माता जी को 30 साल से है, नहीं, मेरी सिस्टर भी है, वो कुमारी है, दो सिस्टर और एक माताजी, तीन है ज्ञान में।
अच्छा, चलो, थैंक यू, ओम शांति।